जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन छे, हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को, किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मदरसन के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीने मतीन के अहकामात सीख कर समझ कर दुरुस्त तरीके के मुताबिक उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान मुअज्जम आलीशान है, औलन नासी बी यौमल कियामा अक्सरहुम अलैया सलातन। फरमाया क्यामत के दिन मेरे करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला हो। अल्लाह करीम हम सबको कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश कीजिए, अपनी आदत बना लीजिए दुरूद पाक को एक खास तादाद में, और अगर ये भी हो सके तो एक खास वक्त के साथ उसको मुतय्यन करके और तवज्जो के साथ अगर दुरूद पाक को वजीफा अपना बना लेंगे तो इसकी बहुत ही ज्यादा इंशाअल्लाह बरकतें पाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक दे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गुज़श्ता प्रोग्राम में हम ज़ेवरात से मुतालिक कुछ अहम अहकामात, मर्द के लिए कौन कौन सी जीनत वो जायज है, किस जीनत के साथ या ज़ेवरात पहनने के हवाले से क्या उसके लिए इजाज़त थी, क्या इजाज़त नहीं थी, ये इस पर भी काफी तफसील से जो है वो गुफ्तगू की है। आज भी कुछ इसी से मुतालिकात शरी मसाइल इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आप अव्वल ताखिर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहें, इंशाल्लाह बहुत सा इल्म दीन सीखने को मिलेगा। आज के मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में मुफ्ती कफील साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहते हैं।
जज़ाकअल्लाह।
कैसे हैं आप? ठीक है। ज़ेवरात की गुफ्तगू हम जब करते हैं तो ज़ाहिर गोल्ड उसमें आता है, सर फहरिस्त, और गोल्ड अब एक तरह की लोगों की पहुंच से भी दूर हो गया है, और मर्द मर्द तो वैसे ही गोल्ड इसकी कोई है मर्द के लिए, कि जैसे बाद मर्द पूछते हैं कोई तो गोल्ड वाली सूरतें हमारे लिए हों कि हम भी पहने।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोना नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत के मर्दों पर सोना और रेशम को हराम फरमाया, और पहनेंगे मर्द भी इंशाल्लाह लेकिन जन्नत में जो है वो
अच्छा जन्नत
पहनेंगे। कि जो चीजें दुनिया के अंदर जो है वो मना है, जैसे जेवरात के अंदर सोना मना है, तो यही जो है वो, जैसे किसी सहाबी रसूल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहने हुए देखा, तो फरमाया जन्नतियों का जेवर तुम पर जो है वो देख रहा हूँ। मुराद ये थी कि जन्नती जो है वो ये तो पहनेंगे, दुनिया में पहनने की इजाजत नहीं है, तो क्यों पहने हुए हो,
यानी उस रिवायत में जन्नतियों का। और हम एक मरतबा जो है वो हमने एक फतवे में भी ये हदीस लिखी, तो किसी ने यार ये जन्नत का जेवर है तो फिर तो पहनना चाहिए इसको, तो उसने वापसी भेजा कि ये कहीं आपसे तो लिखने में तो कुछ नहीं इसमें हो गया कि शायद ये दोस्तियों का जेवर है।
हाँ, लफ्ज लिखा हुआ और आपने जन्नती,
आपने उसने जन्नतियों का कहा हुआ, तो मैंने यही कहा कि भाई ये है जेवर और ये जीनत मिलेगी मर्दों को लेकिन जन्नत में,
जन्नत में जो है वो मिलेगी। तो दुनिया के अंदर जो है बहरहाल सोना पहनना मर्द के लिए जो है वो हराम है। हाँ, वैसे सोना बतौर हिफाजत जो है वो रखना घर में वो मर्द के लिए भी जायज है, उसकी मिल्कियत में भी सोना जो है वो हो सकता है, पहनना मना है, रखना मना जो है वो।
अच्छा, अपनी मिल्कियत में ले सकते हैं, खरीदो फरोख कर सकते हैं, इसके जरिए अपनी करेंसी को जमा कर।
जी बिल्कुल, ये तमाम उमूर जो है वो कर सकते हैं, पहनना मना है। इसी तरह रेशम भी जो है वो मर्द के लिए हराम है। हाँ, औरत के लिए जो है वो जायज है कि औरत जो है वो सोना भी पहन सकती है और रेशम भी पहन सकती है।
बाज़ वक़्त सोना नहीं होता लेकिन सोने का पानी होता है, तो अब इस पे हुक्म असल का रहेगा या पानी का रहेगा कि इसमें
पानी तो दर हकीकत सोना नहीं होता बल्कि वो केमिकल ہوتا ہے تو اس کے اوپر سونے کے احکامات تو لازم نہیں ہوں گے. جیسے کسی کی اگر چاندی کی انگوٹھی ہے اور وہ اپنی شرائط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ وزن کے اندر بھی 4.5 ماشا سے کم ہے, ایک جو ہے وہ نگینے والی بھی ہے, تو اب وہ جائز ہے. اب اس کے اوپر اگر کوئی وہ سونے کا پانی چڑھوا لیتا ہے یا ویسے جو ہے وہ گھڑی کے اوپر جو ہے وہ چڑھوا لیتے ہیں تو وہ جائز ہے, اس کا سونے کا حکم نہیں ہوگا. ہاں البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جیسے عموماً جو گھڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر تو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ سونے کی گھڑی جو ہے وہ نہیں ہوگی, سونے کی گھڑی تو پہننے والا کوئی ایک شاذ و نادر ہوگا. لیکن انگوٹھی کے بارے میں کئی لوگوں کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یار اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, تو لہٰذا جہاں بھی ایسا اندیشہ ہوگا تو وہاں پر پھر جو ہے وہ منع کیا جائے گا تاکہ اس وجہ سے لوگ اس کو تہمت نہ لگائیں کہ یار یہ سونے کی انگوٹھی پہن کے جو ہے وہ گھوم رہا ہے.
یہ تو چاندی کو یہ بتائے گا کس کس کو یہ
کہ یہ جو ہے وہ چاندی کی اور میں نے پانی چڑھوایا. دور سے دیکھنے والوں کو سب کو یہی لگے کہے کہ یار یہ سونے کی جو ہے وہ انگوٹھی پہنا ہوا ہے. تو پھر اس لیے بچنا چاہیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہرگز تہمت کی جگہوں پر کھڑا نہ ہو, ایسے کام نہ کرے جس کی وجہ سے مسلمان اسے تہمت لگائے کہ یار یہ دیکھیں یہ تو ناجائز کام جو ہے وہ کر رہا ہے. حالانکہ وہ جائز کر رہا ہے لیکن اس کی جو ظاہری شکل و شباہت ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے وہ گناہ والا کام کر رہا ہے, حرام کام کیا ہوا ہے سونے کی انگوٹھی.
اور ایک واضح قرینہ بھی موجود ہے,
واضح جو ہے وہ کلر کی وجہ سے قرینہ بھی موجود ہے, تو اس لیے جو ہے وہ بچنے کا حکم دیا جائے گا.
ٹھیک ہے, بٹن وغیرہ کے لیے کچھ مردوں کو یہاں گنجائش ہے؟
جی بٹن کی جو ہے وہ اجازت ہے لیکن جبکہ وہ چین کے ساتھ جو ہے وہ نہ ہو. بعض بٹن ہوتے ہیں جو کہ چین کے ساتھ ہوتے ہیں تو چین کے ساتھ منع ہے, چین کے بغیر فقط بٹن ہے تو وہ چونکہ اس لباس میں زیور کے اندر نہیں آتے اس لیے اس کی جو ہے وہ اجازت ہے. لیکن وہاں پہ بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو اس طرح کا مقصد ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے والوں کا وہ دکھاوا, بس اوقات فخر و غرور تکبر جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے, تو یہ قطع نظر جو ہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو کسی بھی چیز کے عام لباس بھی اگر جو ہے وہ جناب کاٹن کا ایسا کوئی پہنتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں پر تکبر ظاہر کرنا مقصد ہے تو اس کا یہ فعل ویسے ہی جو ہے وہ ناجائز, اگرچہ وہ چیز پہننا جو ہے وہ جائز. تو لہٰذا اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ کس نیت سے وہ سونے کے بٹن اس کے اندر لگوا رہا ہے یا پہن رہا ہے.
ٹھیک ہے, کسی مسلمان کو وہ حقیر ہرگز نہیں جاننا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو شکل و صورت کے اعتبار سے, حسن و جمال کے اعتبار سے, پیسے کے اعتبار سے, کسی طرح بھی اگر کسی پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے تو وہ اللہ کی نعمت جانیے. اور اس نعمت کا شکرانہ ایک یہ بھی ہے کہ آدمی عاجز بنے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ رب نے مجھے ان پر مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے, اب میں نے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ دوسروں کی تحقیر کرے, ان کو حقیر جانے, تو پھر اس سے خطرات ہوتے ہیں کہ وہ نعمت ہی کہیں جو ہے وہ اس سے نہ چھن جائے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, بدھ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سفر کی جو آخری ایام تھے, اصل روایات میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرض میں اضافہ تھا, مرض کا شدت والا معاملہ تھا, اور اسی مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ کا وصال بھی ہوا. تو جہاں آپ کا یوم پیدائش وہ ربیع الاول میں, یوم وصال بھی آپ کا ربیع الاول ہے. اور لیکن ہمیں چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے اس نعمت پر اور نعمت پر چرچا کرنے کا ذکر ہے, اس لیے ہم ربیع الاول میں یوم میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مناتے ہیں. غم منانے کے شریعت میں یوں حکم نہیں ہے کہ برسوں گزر جائیں, صدیاں گزر جائیں اور آدمی غم ہی کیفیت میں یا غم منائے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے یا کسی بزرگ ہستی کا بھی ہوتا ہے, کئی بزرگوں کے سفر کے مہینے میں عرس ہوتے ہیں, تو کیا بزرگوں کے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے پہ کیا انسان اس دن غم کی کیفیت میں آئے گا؟
لیکن بنیادی طور پر تو یہ کہ جب ہم سوگ کی بات کرتے ہیں, غم کی بات کرتے ہیں کسی کے انتقال پر, یقیناً جو آپ کا اپنا ہوتا ہے, پیارا ہوتا ہے, آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے, تو آپ کو جو ہے وہ غم کی کیفیت تو ضرور لاحق ہوتی ہے. لیکن اسلام نے اس غم کے اظہار کی اجازت کسی کے انتقال کے 3 دن بعد تک ہی دی ہے کہ سوگ 3 دن تک ہے, سوائے بیوہ کے لیے کہ اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ سوگ نہیں ہے. تو اگر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی عزیز یا جو ہے وہ رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو بھی اس کا سوگ 3 دن تک ہے. 3 دن کے بعد دل میں ایک غم کی کیفیت ہونا وہ ایک الگ ہے، اس کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ قصدن جو ہے وہ اس کا اظہار جو ہے وہ کریں. ہاں ویسے ہے کہ کبھی ان کی یاد میں آنسو نکل آئے تو وہ ایک جدا بات ہے. اب جہاں تک انبیاء کرام علیہم السلام کا تعلق ہے، تو ایک تو انہوں نے صرف دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا ہے، وہ جیسے جو ہے وہ دنیا میں حیات تھے اس سے اعلیٰ جو ہے وہ زندگی کے ساتھ اب بھی جو ہے وہ اسی طرح جو وہ حیات ہیں، اپنی قبور کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، ساری امت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا اچھا پھر اسی طرح اولیاء کرام کے بارے میں دیکھ لیں کہ وہ اس دنیا سے جو ہے وہ ان کا انتقال تو ہو گیا، لیکن وہ موجودہ دنیا کے مقابلے میں جس دنیا میں تھے اس سے اعلیٰ جو ہے وہ مقام کی طرف چلے گئے. اسی لیے جو ہے وہ عرس منایا جاتا ہے، تو جشن رضا کہا جا رہا تھا. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یار ایک تو ان کا انتقال ہو گیا، دوسرا جشن منا رہے ہیں، کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ تو جشن اسی بات کا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو در حقیقت قید خانہ ہے مومن کے لیے. تو جب آپ کا کوئی بھائی جو ہے وہ قید خانے سے چھوٹے گا تو آپ خوشی منائیں گے. تو جو اللہ والے ہیں جب ان کا اس دنیا سے جو ہے وہ انتقال ہوا تو وہ اس قید خانے سے جو ہے وہ چھوٹ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ بارگاہ کی طرف جو ہے وہ چلے گئے، وہ جنت کے مقامات کی طرف چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب انہیں حاصل تھا وہ مزید جو ہے وہ بڑھ گیا، تو لہٰذا ان کے وہ مقامات اور بلند ہو گئے، درجات بلند ہو گئے، اور اس کے اوپر ہمیں بالکل خوشی بھی ہے کہ وہ ہمارے تھے اور ہیں، اور ان کے اور مزید جو ہے وہ درجات بلند ہو گئے، رب کا قرب انہیں جو ہے وہ اور زیادہ نصیب ہو گیا. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے عرس، یا کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی بزرگ کا جو ہے وہ اگر یوم وصال جو ہے وہ منایا جاتا ہے. تو اولاً تو کہ آپ سوگ منانا جائز نہیں، اس وجہ سے بھی ہم جو ہے وہ سوگ نہیں مناتے. چلیں یہ تو بات آ جائے گی کہ بھائی سوگ نہیں منا رہا، خوشی کیوں منا رہے ہیں؟
ٹھیک ہے،
تو خوشی کی وجہ یہ کہ بالکل انہیں جو مقام اور مرتبہ ملا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو مزید ان کے درجات بلند ہوئے ہیں، جو قرب الہی مزید انہیں حاصل ہوا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ خوشی ہی منانی چاہیے. دنیا کے اندر بھی ہمارے اگر کسی دوست کو یا کسی رشتہ دار کو کوئی پوسٹ جو ہے وہ بڑی مل جائے، وہ جناب وزیر اعظم کے قریب ہو جائے، تو ہم اس کو سیلیبریٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہاں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، قرب کی جو ہے وہ درجات جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اسی اعتبار سے جو ہے وہ ہم خوشی مناتے ہیں. دوسرا اس میں مقصد یقیناً عرس کے اندر یا جو ہے وہ یوم وصال منانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان بزرگ کی یاد اس طور پہ منائی جائے کہ ان کی سیرت طیبہ کو لوگوں میں بیان کیا جائے، ان کی تعلیمات کو لوگوں میں جو ہے وہ بیان کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہے وہ انہیں یاد بھی رکھیں اور ان کے فرامین کے اوپر جو ہے وہ عمل کر کر اپنی زندگی بھی ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں.
کامیاب مومن کو قبر میں ہی کہہ دیا جاتا ہے نم کنومت العرس، کہ دلہن کی طرح سو جاؤ. تو علماء نے یہی عرس بھی اسی عروس سے لیا کہ وہ بھی گویا کہ اب اللہ کے انعامات، اللہ کے انعامات اور نوازشات ان پر جو ہے وہ برس رہے ہیں اور انعامات ان کو ہو رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں اپنے بزرگوں کو اس انداز سے ان کو یاد بھی کرنا چاہیے. لیکن جو بدھ کے حوالے سے غلط قسم کے کانسیپٹ لوگوں میں، وہ ہرگز درست نہیں ہے، اس پہ عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے. سوال بھی آ گیا ہے بدھ کی بات کریں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے بدھ کا ذکر کیا ہے تو خاص کالے چنے اور اس طرح کی کچھ چیزیں کیا کہتے ہیں؟
جی یہ بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے. صدقہ یقیناً بلاؤں کو جو ہے وہ ٹال دیتا ہے، حدیث پاک کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا، لیکن خاص طور پر ماہ سفر سے متعلق جو کانسیپٹ ہے کہ اس میں جناب کو اسپیشلی بلائیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں، تو یہ سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا جو ہے وہ، جو کفار تھے، ان کا یہ جو ہے وہ گمان تھا، ان کے یہ اوہام و نظریات تھے. اسلام نے اس سے منع کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. بلکہ دیکھیں بزرگان دین کے اقوال دیکھیں کہ آج صبح میں دیکھ رہا تھا تو لطائف اشرفی اور ایک جواہر خمسہ کے حوالے سے ایک وظیفہ لکھا ہوا تھا کہ بدھ کے دن جو شخص جو ہے وہ 80-80 بار جو ہے وہ یہ 4 جو ہے وہ سورتیں جو ہے وہ پڑھے تو اس کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ ہوگا. تو بزرگوں کے اپنے جو ہے وہ اس حوالے سے وظائف اور دیگر چیزیں بھی جو ہے وہ موجود ہیں. تو ویسے صدقہ کرنے میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس نیت سے کہ جناب بدھ میں کوئی جو ہے وہ नहुसत जो है उतरती है और उसको टालने के लिए जो है वो हम कर रहे हैं, तो वो नजरिया गलत है। तो उस नजरिए इसी तरह लोग सूरह मुजम्मिल की तिलावत जो है वो करवाते हैं।
बाज़ वक़्त कोई वजीफा किसी बरकत के हुसूल के लिए होता है, उसको आगे जाकर ऐसे बाज़ तवहुमात में लेकर उसको डाल लेते कि शायद ये भी आज के तौर दिन खास है तो ये कई चीजें हमसे दूर करेगा, बलाएं दूर करेगा, या उस तौर पर।
हालांकि ऐसा नहीं,
ऐसा नहीं,
ऐसा नहीं है। कई वजीफे होते हैं बाज़ अय्याम के एतबार से उनका जिक्र है, कई वजीफे हैं जो जुमातुल मुबारक के दिन बयान किए जाते हैं कि असर की नमाज के बाद जो है वो ये वजीफा पढ़ें। अभी गुज़िश्ता दिनों ही मैं वो देख रहा था तो अमीरुल सुन्नत ने भी एक वजीफा जो है वो बयान किया था कि दिल में जो सुराख वगैरह है उस हवाले से जो है वो असर की नमाज के बाद जो है वजीफा पढ़े। तो यूँ मुख्तलिफ वज़ाइफ जो है वो बयान किए जाते हैं, तो वो बाज़ साआतें होती हैं जो बुजुर्गाने दीन का अपना जो है वो एक तजर्बाती मुशाहिदा होता है,
बिल्कुल
उन्होंने मुराकबे में या दीगर चीज़ों में उन साआतों में उतरने वाली तजल्लियात का मुलाहिजा किया होता है, उस हवाले से वो जो है वो बयान जो है वो करते हैं। तो बहरहाल ये नहीं है कि अगर आप इस दिन कोई काम नहीं करेंगे जनाब तो आप पर बलाओं का नुज़ूल हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, आपको जो है ना फौरी तौर पर अपने आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, गुनाहों से बचना है, वो रोजाना ही बचना है और आज भी बचना है, माह सफर में भी बचना है और बकिया 11 महीनों के अंदर भी जो है वो बचना है। कि अगर आप गुनाहों से नहीं बचेंगे तो फिर बिल्कुल जो है वो बलाओं का जो है वो आपको सामना जो है वो हो सकता है कि गुनाहों की नहुसत जो है वो इंसान को इन चीज़ों के अंदर मुब्तला कर दे।
ठीक है, यानी और वज़ाइफ में मेरा ख्याल उसी वक्त ही ख्याल क्या यकीन है कारआमद होंगे कि जब आदमी सिर्फ वज़ाइफ पर नहीं उसके साथ साथ जो शरीयत के अहकामात हैं,
वही ना कि अब 80 मरतबा पढ़ने का या जैसे और भी दीगर जगहों पर वज़ाइफ का होता है, लोग बड़ी पाबंदी से उसके ऊपर अमल करते हैं, लेकिन उसी दिन की फजर की नमाज नहीं पढ़ी होती
जी,
उसी दिन की जोहर की नमाज नहीं पढ़ी होती या और जो है वो दीगर गुनाहों में जो है वो मुब्तला होते हैं। तो वज़ाइफ के लिए तो उलमा कई दफ़ा बयान करते आते हैं कि नमाज बाजमात जो है वो ज़रूरी, ये सबसे बड़ा वजीफा है मोमिन का। जब आप ये पढ़ेंगे तो फिर बकिया वज़ाइफ भी जो है वो आपको फायदा।
हमारे शजरे शरीफ में भी अमीर अहले सुन्नत का अंदाज देखते हैं तो नमाजों के बाद वज़ाइफ जो है उनके हदीस तय्यबा में भी पढ़ते हैं तो कई वजीफे जिनको नमाज के साथ ही कि नमाज के बाद ये पढ़ें, नमाज से पहले ये पढ़ें। रिस्क के हवाले से भी जब एक सहाबी ने अर्ज किया रज़ी अल्लाह अन्हु तो आपने उनको सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह सुबह के वक्त उसको दिया, जिसका वक्त आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सुन्नत और फर्जों के दरमियान में कहा कि इस टाइम।
तो ये भी है कि देखें शफीक भाई, वज़ाइफ भी लोग उन वज़ाइफ पर अमल करते हैं जो बीमारियों से बचाएं, जो रिस्क में बरकत का वजीफा हो और जो है ना यानी उसमें उम्र लंबी,
उम्र
ये तीन जो है वो वजीफे हैं जिस पर लोगों की बड़ी पाबंदी जो है वो होती है और उसको तलाश करते हैं। ईमान की हिफाजत का वजीफा सबसे बड़ा इंसान की दौलत ही ईमान है। हालत के बारे में आते हैं ना कि आप जब भी किसी बुजुर्ग से दुआ करवाते थे मगफिरत की दुआ करवाते थे, तो इस पर कितना जो है वो हमारा जो है वो अमल है कि हम इसके लिए कितनी दुआ करते हैं। कोई ऐसा वजीफा हमने अपनी जिंदगी में रोजमर्रा का मामूल बनाया हुआ हो जिसमें अपने ईमान की हिफाजत, बल्कि जैसे ये भी जिक्र मिलता है कि जो शख्स जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत का तलबगार नहीं होता, उसकी दुआ नहीं करता, तो फिर उसे जन्नत के हवाले से जो है वो आजमाइश है। इसी तरह जो जहन्नम से बचने की दुआ नहीं करता उसके मुतालिक भी अकवाल जो है वो मौजूद है। तो हम जरा दिन भर में देखें कि कितना अल्लाह से रिज्क मांगते हैं और कितनी मरतबा ये दुआ करते हैं कि जन्नत दे और जहन्नम से बचाओ। तो इन चीजों के अंदर
अल्लाह के अगर वो सवालत करें तो ये जिमनन ही कबूल हो जाएंगे,
ही जो है वो चीजें मिल जाएंगी। और अगर ये ना भी मिली किसी को, किसी ने बड़ी कसम कुर्सी के अंदर जिंदगी गुजार दी और जब उसे जन्नत मिलेगी तो ये सब कुछ भूल जाएगा, और जिसने कितने ही ऐशो इशरत के अंदर जो है वो जिंदगी गुजारी वो जहन्नम के पास से लम्हे भर के लिए भी गुजरेगा तो सारी आसाइशों को भूल जाएगा और समझेगा कि सबसे बढ़कर मैं ही तकलीफ के अंदर।
अल्लाह करीम हमें नेकी की तौफीक दे और नेक काम करने की भी तौफीक अता फरमाए। ऐसे तमाम तवहुमात से जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर, दिली तौर पर हम इनसे गैर यकीनी हो जाए, यकीन रखें वो शरीयत मुताहरा के अहकामात पर और उधर इन तवाहुमात पे हमारा कोई किसी तरह का भी जो है वो ना उस पर आसरा रखना चाहिए ना इस तरह के जहनों में कोई उसके लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर होना चाहिए। बहरहाल आपके सवालात भी हैं, कॉल्स भी हैं, कुछ वीडियो सवालात भी हमारे पास मौजूद है, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वीडियो सवाल में क्या पूछा जाए।
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि हम पुराना सोना खरीदते हैं इसके एवज नया सोना देते हैं, इसमें जो कमी बेशी होती है वो रकम की सूरत में अदा करते हैं, ऐसा करना कैसा?
ठीक है, ये तो सोने जो है ना वो जेवरात के साथ पहनने के नहीं, खरीदो फरोख्त के भी कुछ मामला, पर ये भी तकरीबन हर फैमिली के साथ हर घर के साथ अटैच होते हैं, और कभी कुछ डिजाइन का अब नए फैशन आ जाता है, नए अंदाज होते हैं, तो लेडीज में एक होता है कि अब इसको चेंज कर लिया जाए, तो क्या कहते हैं?
लेकिन सोने की जो खरीदो फरोख्त है, यानी खरीदो फरोख्त के बाब के अंदर एक अलग चैप्टर मौजूद है जिसे बेसर्फ कहा जाता है, सौद से बेसर्फ,
ठीक है।
ये सोने की सोने के बदले में खरीदो फरोख्त, चांदी की चांदी के बदले में, या करेंसी के बदले में खरीदो फरोख्त, इन मसाइल पर मुश्तमिल बाब है। इसके अपने जुदा अहकाम हैं और नॉर्मल खरीदो फरोख्त से अलहदा स्पेशल अहकाम है,
ठीक है।
वजह इसकी ये है कि इसके अंदर सूद का अंसर बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो लिहाजा उसकी एहतियातें हैं कि जब आप जिन्स को जिन्स के बदले में बेच रहे हैं, सोने को सोने के बदले में बेच रहे हैं, तो एक तो हाथों हाथ होना जरूरी है, उधार नहीं हो सकता। हाँ, उधार से इन मानों में कि हाथों हाथ दोनों तरफ से वो उसके ऊपर कब्जा भी कर ले। हमारे यहाँ उधार
उसी निश्चित में,
हाँ, हमारे यहाँ उधार किसी और माना में समझा जाता है कि भाई जिसके पैसे बाद में दिए जाएंगे,
ठीक है।
यहाँ वो नहीं कि अगर सोने के बदले में सोना बेच रहे हैं तो हाथों हाथ, तो दूसरा ये कि बराबर बराबर,
अच्छा,
ये जरूरी है। अब हमारे यहाँ सोने की अमूमन खरीदो फरोख्त के अंदर ये होता है कि भाई इसके अंदर इतना जो है वो मेल है, या इसके अंदर इतनी मिलावट है, तो इस एतबार से इस ये जो है वो मसलन 4 ग्राम का है, तो इसके बदले में जो मैं आपको दे रहा हूँ वो 5 ग्राम मेल वाला दे रहा हूँ, खालिस 4 ग्राम का है मसलन, और मेल वाला जो है वो 5 ग्राम जो है वो, ये लेन देन किया जाता है, तो ये जायज नहीं है। यूं ही कैरेट के एतबार से भी जो फर्क होता है तो उसमें भी ऐसा किया जाता है जो कि जायज नहीं है, और ये सूद में शुमार होता है। यानी हम ये समझते हैं कि किसी को हम पैसा देते हैं कर्ज पर और उसके ऊपर नफा लें, वही सूद है, बिल्कुल वो भी सूद है, लेकिन ये खरीदो फरोख्त भी सूद है, और जो सूद के आकाम है वो यहाँ पर भी जो है वो लाजिम आते हैं, और वो वईदें यहाँ पर भी आती हैं। तो लिहाजा इस चीज का ख्याल करना जरूरी है कि खवातीन सोने का वो कर रही हैं, या खुद सराफा वाले अगर इस बात का ख्याल कर लेंगे, सामने वाले काफी हद तक जो है वो बच जाएंगे, क्योंकि सराफा एक मरतबा अपने मसले सीख लेगा, वहां तो सामने वाला ग्राहक जो हर तरह का ग्राहक है वो ना समझेगा, ना जो है वो उस चीज पर अमल जो है वो कर सकेगा, ना उसे मालूमात होंगी। तो बहरहाल सोने को जब आप सोने के बदले में खरीद रहे हैं तो उसका सिंपल उसूल ये है कि नकद हो और बराबर बराबर,
नकद हो और बराबर बराबर हो,
चाहे
अगर ये
किसी भी कैरेट का हो दोनों तरफ,
अच्छा किसी भी कैरेट का, ये नया आपने,
हाँ, यानी फर्क नहीं देखा जाएगा। अगर एक तरफ मिसाल के तौर पे जनाब 24 कैरेट का है और दूसरी तरफ 22 या 20 कैरेट का है, तो इसकी वजह से ये नहीं होगा कि एक तरफ आप बोलें जो है ना 20 ग्राम होगा और दूसरी तरफ 24 ग्राम होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। बल्कि दोनों तरफ ही 24 ग्राम होगा, चाहे वो कोई भी कैरेट हो, क्योंकि सोने का सोने के बदले में जो है खरीद और फरोख्त की जा रही है। हाँ, मगर ऐसा करना यकीनन नुकसान वाली बात है कि 24 कैरेट वाले के प्राइस कुछ और हैं, 20 कैरेट वाले के प्राइस
यही बात। दूसरी में सर ये भी सोच रहा है कि अब जाहिर है कि ये अपने घर से कोई भी खातून मर्द जेवर लेकर आया है, और उसी के उतने ही वजन के और उतने ही उसी तरह का आमतौर पर डिमांड होती है, कोई उससे अब भारी लेना है, जाहिर है कोई नया डिजाइन है, कोई और है, तो कुछ ना कुछ ये फर्क तो लाजमी होता है
जी।
तो इसका कोई सिंपल सादा हल नहीं है
जी? इसका सिंपल और सादा हल यही है कि सोने के बदले में खरीदो फरोख्त ना करें, बल्कि अपना जेवर पहले पैसों के बदले में बेच दें उन्हें,
ठीक है,
और फिर उसके बाद उन पैसों के बदले में ही आप दूसरा सोना खरीदें।
सही, पैसे लेना जरूरी तो नहीं?
पैसे लेना जो है वो यहाँ पर जरूरी नहीं होगा, फिक्स है वो जो, यानी जेवर बना हुआ है जिस कंडीशन के अंदर है वो आपने जो है वो बेच दिया सामने वाले,
ठीक है।
अब उसने बताया कि भाई आपके जेवर जो है वो इतने रुपए का हुआ, आप कहें तो मैं आपको इसका कैश दे दूं,
ठीक है,
ठीक है। तो ये जो है वो उनका तय हो गया कि भाई ठीक है जो है वो कैश, ये ना बोलें कि कैश दे दूं या सोना दे दूं, क्योंकि अगर सोना के बदले में देंगे तो वही जो है वो सोना का सोने के बदले में जो है वो जेवर की खरीदो फरोख्त हो जाएगी, वो जायज नहीं। तो ये तय हो गया कि भाई ठीक है, ये एक सौदा हमारा कम्प्लीट हो गया कि ये मैंने आपको बेच दिया। अमूमन होता क्या है कि बेचा नहीं जाता, फाइनल नहीं किया जाता,
और वो
इसके रेट लगाए जाते हैं,
सही,
और फिर दूसरे की वो की जाती है खरीदो फरोख्त की जाती है, उसके रेट लगवाए जाते हैं। अब उसके बाद ये होता है कि भाई ठीक है ये हो गया, अब कितने और देने वो बता दें, वो दे देते हैं आपको, तो ये जो है वो नाजायज सूरत की तरफ ही जो है वो चला जाएगा, इसकी इजाजत नहीं। तो पहले आप जो है वो उन्हें बेच दें या रेट लगवा लें, रेट लगवा के इसको एक तरफ रख दें, दूसरा पूछ लें कि हाँ भाई ये कितने का है, ये जो है वो इतने का, भाई ठीक है। अब उसके बाद बोलेंगे ठीक है ये हमने आपको इतने का बेचा पैसों के बदले में, उसने कहा ठीक है मैंने आपको खरीद लिया आपसे। अब जो है वो उसे ये कहें कि मैं आपसे ये नया वाला जेवर जो है वो इतने रुपयों के बदले में खरीदता हूँ, और अब जो है वो उसे पैसे जो है वो अदा कर दें। तो ये तरीके कार इख्तियार करेंगे तो ये जायज होगा कि पैसा अलग जिन्स है कागज है और सामने जो है वो धात है सोने की धात जो है वो मौजूद है, तो दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी तो अब बराबरी शर्त नहीं होगी। तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी है, वरना जिस तरह हमारे यहाँ अमूमन खरीदो फरोख्त होती है वो भारत सोने के बदले में ही हो रही होती है और उसमें कमी बेशी होती है और कई जगहों पर उधार भी होता है, जैसे बसा औकात जो है वो उसको बनवाने का कह देते हैं
सही
कि भाई ये वाला डिजाइन का इसके बदले में आप हमें बना के दे दिएगा, वो कहता है परसों आके जो है वो आप ले जाइएगा, तो ये उधार जो है वो हो रहा है।
ठीक है,
तो इस एतबार से भी जो है वो ये नाजायज है, तो इससे बचना बेहद जरूरी है। ये बात जहन में रखेंगे कि ये सूद है, जब सूद है तो फिर अब हर मुसलमान खुद अंदाजा कर सकता है कि किस कदर जो है वो बड़ा गुनाह है और उससे बचना किस हद तक जरूरी।
ठीक है, और ये आसान सीधा सा हल है, इसी को इख्तियार करना चाहिए। मेरा ख्याल है ज्यादा जो सराफा बाजार के आपस में दुकानदारों के लेन देन होते हैं उसमें इसका काफी अमल दखल होता है,
उसके अंदर भी होता है, उसमें भी बिल्कुल जो है वो होता है कि वहाँ भी यही होता है कि वो ये जब बनवाने के लिए खास तौर पर जो है वो देते हैं तो वहाँ भी यही मामला होता है कि ये सोना देते हैं डली की सूरत में या वैसे जो है वो खाम माल की सूरत में देते हैं और वापसी जो है वो जेवर जो है वो लेते हैं। तो एक तो उसके अंदर जो है वो उधार भी जो है वो हो रहा होता है और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें भी अपने इस काम में जो है वो बचना जरूरी है। और जो आम पब्लिक है कि वो समझ रही होती है कि इसमें कौन सा गुनाह है, ये तो हमने एक सिंपल सी चीज जो है वो खरीदी है, तो हालांकि उसके अंदर जो है वो सूद जैसा बड़ा गुनाह पाया जा रहा होता है, तो उन्हें भी इस चीज से बचना जरूरी।
माशाल्लाह, एक और वीडियो सवाल है हमारे पास, उसको देखते हैं क्या पूछा।
मोहम्मद सरवर अतारी जुनान से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल है, क्या हम सोने का दांत लगवा सकते हैं?
अगर वो मेटल का बना हुआ है, लोहे का या चांदी का, तो वो लगवाया जा सकता है, इसमें हरज नहीं। लोहे का इसलिए नहीं लगवाया जाता कि उसमें जंग लग जाएगा, तो अमूमन उन धातुओं का बनाया जाता है कि जिसमें जंग नहीं लगता। तो हत्तल इम्कान कोशिश करें कि चांदी तक लगवाएं, सोने से बचें। हाँ, अगर किसी को चांदी का भी रास नहीं आता, बदबू करता है या और कोई प्रॉब्लम करता है, तो फिर वो सोने का भी लगवा सकता है, लेकिन चूंकि सोने का दांत लगवाने में इख्तिलाफ है उलमा का, इसलिए हत्तल इम्कान उससे बचना बेहतर है। हाँ, जहाँ कोई सूरत ना बन रही हो तो फिर वहां पर सोने का दांत भी लगवाया जा सकता है।
दांत के हवाले से हमने कुछ गुफ्तगू की है, तो दांत में अपना ही दांत निकल जाता है या बासकत कोई उज्व होता है वो, ये अब इसमें दो कैफियतें होती हैं, एक तो ये कि उस दांत को किसी और जगह फिट करना और एक है उसी जहां से निकला है वहीं उसको बनाकर जो है वो उसी जगह पर उसको लगा देना। तो इसका फतवा अहले सुन्नत से फतवा जारी हुआ कि ये उसी जगह वाला वो खास है, यानी वो तो उसकी इजाजत दी गई है।
जी जी,
यानी जहाँ दांत निकला है वहीं से उसको वो लगा सकते हैं। तो अपना ही दांत अगर टूटा हुआ है तो दोबारा उसी जगह अगर उसको लगाते हैं तो इसकी बहरहाल इजाजत मौजूद है। बहरहाल कुछ ऑडियो कॉल हम सुनते हैं, देखते हैं नाज़रीन क्या।
मेरा नाम मोहम्मद रमजान है, बुरेवाला सिटी से मैं बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास घड़ी है जिसमें सुइयां जो हैं वो सोने की लगी हुई, क्या वो घड़ी मैं पहन सकता हूँ?
घड़ी की पानी वाली तो आपने बात की है, लेकिन यहाँ आपने कहा है कि महंगी होती है और आमतौर पर घड़ी को नहीं लेता, लेकिन इतना कुछ तो लगा सकते हैं ही नहीं आप।
सुई जो है वो लगवा लेते। घड़ी के डायल से मुतालिक तो है कि घड़ी का डायल अगर सोने का है तो उसे पहनना जायज नहीं है, कि यहाँ पर सोने का इस्तेमाल एक है पहनना और एक ये है कि वैसे सोने का इस्तेमाल करना, वो मर्द औरत दोनों के लिए हराम।
अच्छा,
औरत को पहनना तो जो है वो जायज है सोना, लेकिन
इख्तियार करे पहने,
लेकिन उस सोने के प्याले में पानी पिए ये जायज औरत के लिए भी नहीं है।
हाँ,
के लिए भी जायज नहीं है।
पेन कलम इस तरह की
चीजें, पेन जो है वो सोने का कोई इस्तेमाल कर रहा है तो ये औरत के लिए भी जायज नहीं है। तो इसी तरीके से घड़ी अगर है तो अब घड़ी में पहनी भी तो वो सोना पहनावा तो नहीं है, लेकिन वो जो उसका इस्तेमाल है डायल को देखना और उससे जो है वो वक्त का अंदाजा लगाना, वो डायल से ही जो है वो आ रहा है और वो सोने का है, तो गोया के वो सोने का इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे उलमा ने منع فرمایا ہے.
ٹھیک ہے جی. مزید سوال
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ سنی ہوئی بات ہے کہ عورت کے لیے زیور پہننا لازمی ہے چاہے انگوٹھی ہو نماز کے دوران, اس کے علاوہ زیور کے علاوہ اگر نماز پڑھتی ہے تو مکروہ ہے, یعنی اس کو زیور پہننا لازمی ہے نماز کے دوران سجاوٹ وغیرہ, اس حوالے سے رہنمائی فرمائے.
جی عورتوں کے حوالے سے کہ زیور پہن کر ہی اسے, بعض چوڑیاں سمجھتے ہیں صرف کہ چوڑیاں پہنے بغیر یہ نہیں نماز پڑھنی, اور بعض اس کا الٹا بھی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو یہ اتارنی چیزیں ہیں, تو کیا ہے؟
زیور پہننا جو ہے وہ عورت کے لیے مستحب ہو جاتا ہے بعض احکام میں, اور بعض اعتبار واجب بھی ہو جاتا ہے جب شوہر جو ہے وہ زینت کا جو ہے وہ اسے حکم دے گا جائز زیورات کے ذریعے سے. پر اوور آل عورت کو جو ہے وہ زیور پہننا چاہیے عام حالت کے اندر, تاکہ مردانہ وضاکتہ سے عورت جو ہے وہ الگ نظر آئے گی اپنے جو ہے وہ زیورات کی وجہ سے بھی. تو بہرحال اگر, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر فرض و واجب ہے زیور اور اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی, ایسا ہرگز نہیں. بغیر کسی زیور کے بھی اگر عورت جو ہے وہ نماز پڑھتی ہے تو بالکل پڑھ سکتی ہے, بلکہ بعض تو چیزیں ہیں جس کے اندر اسے زیور نہ پہننے کا حکم ہے, جیسے عدت کے اندر عورت ہے, سوگ کے اندر ہے, تو اب اس کو سارے زیورات ہی اتارنے کا حکم ہے, وہ کوئی بھی زیور عدت کے اندر جو ہے وہ نہیں پہن سکتی, پہنے گی تو جو ہے وہ گناہگار ہوگی. تو اب کیا عدت کے زمانے کی ساری نمازیں وہ نہیں پڑھے گی؟ ایسا نہیں ہے, وہ نمازیں بھی جو ہے وہ پڑھے گی. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ عورت کے لیے زیور اس طرح لازم ہے کہ اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی, یہ درست نہیں ہے. عورت کی نماز بغیر چوڑیوں کے بھی ہو جاتی ہے اور بغیر زیور کے بھی ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے, بغیر چوڑیوں کے, بغیر زیور کے, اور پہنے بھی تو کوئی حرج,
پہنے تو بھی کوئی حرج نہیں, الا یہ کہ اسے شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہ ہو, جیسے عدت والی عورت کے اسے زیور پہننا.
ٹھیک ہے. بریلی شریف سے سوال ہے, اعلیٰ حضرت کے معاہدے سے سوال ہے, کہتے ہیں کہ شادی میں, یہ ہمارے محمد عرفان صاحب ہے جنہوں نے وہاں پہ سوال کیا ہے, کہتے ہیں کہ شادی میں مرد کو مہندی لگائی جاتی ہے, مرد کو, تو کیا کہتے ہیں؟
مہندی لگانا جو ہے وہ عورتوں کی زینت ہے, مرد کے لیے مہندی فقط بالوں میں لگانے کی اجازت ہے, سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں, اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. لہٰذا شادی ہو یا شادی کے علاوہ کوئی بھی موقع ہو, مرد کو مہندی لگانا جائز نہیں ہے, چاہے وہ دولہا ہو یا کوئی اور, حتیٰ کہ جو نابالغ بچے ہیں انہیں بھی مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے, لگانے والے گناہگار ہوں گے.
ٹھیک ہے, نابالغ بچوں کو بھی نہیں لگ, اور خواتین,
خواتین جو ہے وہ مہندی لگا سکتی ہیں, ان کی تو زینت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. ہاں, ان کو بھی مہندی لگانے میں اس مہندی سے بچنا چاہیے کہ جو کہ اپنا جرم جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے, تہ جو ہے وہ لہر چھوڑ دیتی ہے باڈی کے اوپر, جس کی وجہ سے وضو غسل میں پانی جو ہے وہ اصل کھال تک نہیں پہنچ پاتا. تو ایسی مہندی سے بچنا خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے وضو غسل میں پرابلم ہو.
ٹھیک ہے جی.
میرا سوال یہ کہ اگر ہم سونے کی انگوٹھی سفر پر پہن لیں اور ضرورت پڑنے پہ اس کو بیچ دیں اور ہمارا سفر آرام سے گزر جائے, تو کیا اس کی اسلام میں اس کی اجازت ہے؟
یہ سوال بھی صرافہ بازار سے لگ رہا ہے اور دکانداری پوچھ رہے ہیں, اور یہ کوئی ایک نئی چیز لائیں اس طور پر.
جی, اصل میں چاندی کی انگوٹھی کے حوالے سے وہ ذکر ہے نا کہ جناب ضرورت پڑنے پر جو ہے وہ اس کو بیچ کر بندہ ایک وقت کا کھانے کا جو ہے وہ گزر بسر اپنا جو ہے وہ دوران سفر کر لیتا ہے, اس طرح کی کچھ باتیں جو ہے وہ کتابوں میں بھی ملتی ہیں. لیکن اصل میں جو یہ تو ہے اس کا بعد کا ایک اس کا وہ نتیجہ, لیکن اس وجہ سے چاندی کی انگوٹھی جائز نہیں ہے. چاندی کی انگوٹھی اس لیے جائز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مقدار میں انگوٹھی کو جائز قرار دیا. آپ کا فرمان جو ہے وہ اس کے اندر اصل ہے کہ وہ ان وجوہات کی بنیاد پر جائز نہیں ہے کہ بولیں یہی وجہ کہیں اور آ جائے گی تو وہاں بھی وہ چیز بھی جائز ہو جائے گی, ایسا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی کی اجازت دی, اور وہ بھی اجازت ہے. سنت جو ہے وہ قاضی کے لیے ہی ہے جو کہ جناب اس سے اسٹیمپ کرتا ہو. صحیح, بھی زمانہ اس سے اسٹیمپ بھی نہیں ہوتی تو یوں عام طور پر بھی سنت جو ہے وہ نہ رہی. تو لہٰذا, لیکن وہ جو اجازت ہے وہ چاندی کی انگوٹھی کے ساتھ ہی, ویسے آپ کو کرنا ہے تو ٹھیک ہے, آپ سونا جو ہے وہ جیب میں رکھ کے لے جائیں, پہن کر ہی جانا ضروری تھوڑی ہے.
اور یہ لے کے بھی جائے گا, وہاں بیچے گا بھی نہیں, یعنی کوئی اگر اس طرح لے کے بھی جاتا ہے اس کو,
جب آپ اتنے بڑے شہر میں جہاں آپ سونا بیچنے جائیں گے تو وہاں اے ٹی ایم کارڈ ساتھ رکھ کے لے جائیے گا, تو آپ کا گزر بسر جو ہے وہ हो जाएगा सफर के अंदर। तो बहरहाल ये जो है वो बासाओकात लोगों के जहनों में इस तरह की चीजें जो है वो आती
वो होती है कि ये सोना जब आमतौर पर बयान किया जाए सोने की ममानत है, नहीं नहीं वो कोई रिवायत में तो है ना बेचने के हवाले से और आगे जाकर काम में है, तो भाई उसको साथ लेके चला जाए, उसको अपने
पहन कर ही जो है वो जाना जो है वो जरूरी तो जो है वो नहीं।
ठीक है जी मजीद सवाल
उलमा इकराम से ये सवाल है कि हम मार्केट में सुनारों से कारोबार करते हैं तो उनसे जो हम रकम लेते हैं तो रकम के बदले में बाद में उनको जो हम सोना बाद में जाके दे के आते हैं तो वो सही है कि नहीं सही? तो किसी वक्त जो है उनसे हम सोना लेते हैं तो सोने के बदले ही सोना दे देते हैं तो उनका वापस कर देते हैं, इसके बारे में हमने थोड़ी सी मालूमात ले ली थी कि ये इसमें सूद आ जाता है कि नहीं आ जाता?
ये बहुत बड़ा टॉपिक है कफील भाई और लगता ये है कि हमें इस पे काफी गुफ्तगू करनी चाहिए। सराफा बाजार या सोने के कारोबार करने में ये बहुत सी ऐसी चीजों का अमल दखल होता है
कि दो साइड है अगर आप कहें, एक तो इंटरनल के सराफा वालों का अपना कारखाने वालों से काम करवाना, पॉलिश करवाने वालों से काम करवाना, भट्टी वालों पे काम करवाना, ये पूरा जो इनका इंटरनल जो है वो जगह में जहाँ पर सोने की समझे मैकिंग होती है, ये एक अलग पोर्शन है और एक पब्लिक के साथ जो खरीदो फरोख्त है वो एक अलग जो है वो पोर्शन है और दोनों ही के अंदर जो है वो फी जमाना जो है वो इसमें कई जगहों के ऊपर नाजायज उमूर का इर्तिकाब हो रहा होता है,
इसकी बकायदा जो है वो इनको रहनुमाई लेनी चाहिए। और ये जहाँ पे जैसे ये मामला होता है सोना ही लेना है सोना ही देना है और उसमें उधार वाली ये सूरत बहुत ज्यादा आम इनमें बहुत ज्यादा है
जी, तो उसमें यही जो है जैसे हमने बयान किया कि जब भी आप सोने की सोने के बदले में करें, ऐसे ये लोग पैसों के बदले में करते भी नहीं,
करते ही नहीं,
ये करते ही जो है वो सोने के बदले
पैसों की वैल्यू कम हो जाती है ना, सोने की वैल्यू तो
वैल्यू जो है वो अपने, तो बहरहाल ये पैसों के बदले में जो है पैसा होगा ना जब भी जो है वो ये पैसों के बदले में नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल जब आपने गुनाह से बचना है तो फिर बहरहाल थोड़ा सा आपको जो है वो चेंज करने की जरूरत और हाजत है। और इसके अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि एक आध दुकानदार अपने तौर पर करने की कोशिश भी करेगा तो शायद वो ना कर सके।
अच्छा,
क्योंकि पूरा जो है वो एक निजाम चल रहा है ना, पूरी एक जो इनकी पूरी यूनियन होता है, पूरा जो एक कारखाने की
बकायदा एक बन जाती है इंडस्ट्री टाइप की
जी, तो वो पूरी इंडस्ट्री है। तो बहरहाल वो इससे ये मतलब नहीं है कि वो शख्स बोले कि मैं तो मजबूर हूँ अब मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, गुनाह से तो बचना जरूरी है। लेकिन अर्ज करने का मकसद यहाँ पर ये है कि जो इस यूनियन के सरबराह होते हैं कमेटियां होती हैं उन्हें चाहिए कि उन वो अगर इस तरह शरीर रहनुमाई लेकर कुछ अपने जो है वो कारखानों की या अपनी जो उनकी जो भी इंडस्ट्री है अपने इलाके के अंदर उसमें अगर शरीय एतबार से कवानीन नाफिज कर देंगे तो ये उनके लिए सदकाए जारिया भी होगा आगे वालों के लिए भी, उनके अपने लिए भी, और बहुत सारे लोगों को जो है वो गुनाह से बचाने का उन्हें सवाब भी मिलेगा।
ठीक है ठीक है। अच्छा, वो हमें कुछ मैसेज भी इसी तरह के कह रहे कि आप कह रहे हैं गोल्ड को इस तरह सुनार को नहीं बेचना रेट लगवा के, तो रेट तो बहुत कम लगा के देते हैं वो, तो बिल्कुल ऐसा करते हैं कि बेचने को दिल ही नहीं करता, तो इस वजह से हम सोने का ही अदला बदला करते हैं
जी,
तो अब क्या करें? ये कह रहे हैं रेट कम लगता है, अगर हम रेट लगाएंगे तो सुनार हमसे लेगा बहुत कम रेट में लगाएगा, तो हम वजन ही रखते हैं भी मेरा इतना वजन है तो अब हम सोने के बदले में सोना ही लेंगे, तो ठीक है भाई आप फिर उतना ही वजन ले लो, हमने मना तो नहीं किया ना सोने के बदले में सोना,
ऐसे
क्या ऐसा ऑप्शन इख्तियार किया जाएगा कि ये उतना वजन उसके बराबर हो गए और दूसरे वजन के पैसे दे दें?
नहीं, फिर अलग ही करना पड़ेगा ना,
ठीक है,
उसके लिए मिसाल के तौर पर उसकी सूरतें हो सकती हैं, लेकिन अगर बनाना चाहे मिसाल के तौर पर कोई सेट निकलवाया
सही,
अब उसके अंदर ये हुआ कि जो हार या लॉकेट है वो तो इनके सोने के वजन के बराबर है
सही है,
ये उसकी उसके बदले में खरीदो फरोख्त कर लें, और जो बालियां हैं उसके अलग से पैसे जो है वो तय कर लें कि भाई ठीक है ये हार इसके बदले में दोनों का वजन बराबर है, ठीक है ये इसके बदले में बेच दिया और ये जो है वो जो दो बालियां हैं इसके ये इतने पैसे बनते हैं हम, तो ये इसमें ये भी हो सकता है कि ग्राहक जाकर उन्हें कहे ना कि देखें हम शरई एतबार से इस पर अमल करना चाहते हैं, इस गुनाह से बचना चाहते हैं, नतीजा वही होगा लेकिन तरीक़ेकार जो है वो जुदा होगा जिससे अहकाम के ऊपर जो है वो फर्क पड़ेगा, तो लिहाजा ये उन्हें इस तरीके से बात करेंगे तो उम्मीद है कि जो है वो इनकी बात मानकर उस पर अमल कर लेंगे।
ठीक है माशाल्लाह जी मजीद सवाल।
एक तो सवाल ये है कि मैं एक पार्टनर के साथ काम करता हूँ, उसने मुझे कुछ पैसे देने थे तो उसने अपने जेवर मुझे दे दिए घर से लाके, कि ये मुझे कहा कि ये आप भले भेज दें, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा टाइम हो गया। मैं ये बेच के जितना मेरे पैसे मैं वो लेके उसको बकाया अगर ज्यादा होंगे उसको वापस कर लूं, ये सही है कि नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि मेरी छोटी बहन ने अपने बड़ी बहन को जो अपने जेवर दिए थे तकरीबन 8-10 साल पहले, अभी वो तकाजा कर रही है कि मेरे जेवर जो है मुझे वापस कर लो, अभी उसको क्या करना चाहिए?
ये बहुत अहम मसला इन्होंने दो तरह के, बाज बात ऐसा होता है जेवर ही कर्ज ले लिया जाता है, अब कर्ज की सूरत में दे दिया उसको, ठीक है भी, और अब चूंकि उसकी मालियत वो बिल्कुल रेट चढ़ गया, आसमानों से बातें हो रही हैं, तो अब इसको क्या करें? ये वापसी जब रिटर्न उनका वो तकाजा कर रहे हैं तो अब कौन सी उसकी वैल्यू लगा के दिया जाए या उसको वही वो सोने का ही तकाजा कर सके?
जेवर तो असल में कर्ज देना भी नहीं चाहिए, वजह ये है कि जेवर मिसली अमूमन जो है वो नहीं होता कि उस जैसा जेवर जो है वो सेम टू सेम आपको मार्केट के अंदर जो है मिल रहा हो, मुख्तलिफ डाइयों के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं, 2 साल के बाद वो वाला डिजाइन ना वो डाई मौजूद, कहाँ से जो है वो देंगे। और कर्ज के अंदर ये है कि मिसली चीजों में कर्ज दिया जाता है, वैसे है कि सोने की डली दे दी, बिस्किट सोने का दे दिया, सिक्का दे दिया, तो वो बताए कि वो नॉर्मल मिलेंगे हर जमाने में उसी तरह के मिलेंगे।
हमारे यहाँ जैसे यही होता है ना, अब उस सामने लेने वाले को भी मकसूद ये जेवर नहीं है ना, इसकी बनावट है, तो वो पूरा अपना जेवर हमारा 5 तोले भाई 8 तोले ये उठाया उसको वजन के तौर पर, जेवर की बनावट के तौर पर नहीं, ये उसको दे दिया है उसको, और अब उसने उससे तकाजा कर।
हरल जब आप जो है वो यूं सोना जो है वो उधार किसी को जो है वो देते हैं कि भाई सोना मैं आपको उधार दे रहा हूँ मिसली होने के एतबार से, तो अब उतना ही सोना जो है वो उधार में वापस लिया जाएगा, चाहे 10 साल बाद लें चाहे 50 साल बाद लें। तो अब या तो आप सोना वापस करें या फिर जो है वो आप उस सोने के पैसे वापस करें, लेकिन जब पैसे लगाएंगे तो पैसे उस वक्त के थोड़ी लगाएंगे जिस वक्त आपने दिए थे, क्योंकि अब आप पर लाजिम तो है सोना देना। तो अब आप मार्केट से सोना खरीदने जाएंगे तो जितने पैसों का आपको सोना मिलना है उतने पैसे उसको दे दें, अगर वो कबूल करता है, वो भी उसके कबूल करने पर, वो कहता है कि नहीं है ना मैंने तो आपको जो है वो सोने का बिस्किट दिया था, मुझे सोने का बिस्किट ही चाहिए, तो आपको सोने का बिस्किट ही उसे खरीद कर,
और उसका हक बनता है कि वो अपनी जो चीज दी उसी तरह का तकाजा कर
देना होगा। मिसली चीजों के अंदर कर्ज इसीलिए होता है कि आप सेम उसी तरह की चीज जो है वो कर्ज के अंदर उसे लौटाते हैं, अगर उसकी कीमत देना चाहते हैं तो बाहमी रिजामंदी से जो है वो तय होता है, और बाहमी रिजामंदी से अगर कीमत लेन देन तय हो जाए तो फिर
बात बड़े सियाने होते हैं ना, वो किसी को कर्ज वाली बात भी होती है तो वो उसको किसी और करेंसी में देते हैं, डॉलर की सूरत में दे दिया, किसी और सूरत में दे दिया, भाई ये लो भाई और मुझे यही चाहिए बाद में
जी,
इसी तरह। तो ये इसका मुतालबा ठीक है
जी, बिल्कुल ठीक है कि जो चीज उसने कर्ज में दी है वापसी वही चीज है वो की, बल्कि अगर शर्त कर ली देते वक्त कि मैं आपको दे रहा हूँ डॉलर, वापसी आपसे लूंगा मिसाल के तौर पर दीनार, तो ये जायज नहीं
है।
कर्ज में आप कहें कि भाई मैं दे रहा आपको जो है वो
अदना है और आला
जो है वो लूंगा, या और कोई भी जो है वो इस तरह की शर्त आप लगाते हैं तो वो जायज नहीं है। कर्ज के अंदर होता यही है कि जो चीज दी जा रही है वही चीज वापस की जाए,
वही वापसी की जाएगी।
अब जहाँ पे अच्छा एक पहलू वो होता है जैसे इन्होंने कहा कि मुझे उसने जेवर ला के दे दिए कि यार ये बेच के तुम अपना वसूल कर लो
जी पार्टनर,
तो अब जब इसने ला के दिए ना तो ये सोना इसने उसके बदले में अदा नहीं किया कि यार जो तुम्हारा था मैंने उसके बदले में तुम्हें ये दे देता हूँ, नहीं, बल्कि कहा इसे बेच के अपने पैसे वसूल कर लो, तो अब उसे बेच के पैसे वसूल करेगा और जो बचेंगे वो वापस करेगा उसे,
सही है,
क्योंकि इसने उसे बेचने का वकील किया है,
सही है।
इसी तरह फैमिली के अंदर भी बसा औकात बाज जगहों पर उधार लेन देन के सोने के मसाइल होते हैं, वहां पर भी बसा औकात वो उधार नहीं हो रहा होता, वहाँ पैसों का ही उधार हो रहा होता है। जैसे कहा कि भाई मुझे जो है वो इतने पैसों की जरूरत है, उसने कहा ठीक है यार ये मेरा 3 तोला जेवर है, आप इसे बेच कर जो है वो आप जो अपने काम जो है वो चला लें, इसको जो है वो आप जो है वो इसके वो। तो अब वहां पे वो उसकी इजाजत से बेच रहा है, तो अब वो पैसों का कर्ज हुआ गोया कि भाई जो उसके बदले में जो पैसे मिले 2 लाख 3 लाख रुपए वो कर्ज हुआ, अब वो 2 या 3 लाख ही वापस करने होंगे। अलबत्ता ये अब जरूरी है कि किस जगह पर पैसों का हुआ और किस जगह पर सोने का ही जो है
सोने का
उधार हुआ, ये होगा क्योंकि
सोना
में इख्तिलाफ होगा और इसकी वजह से बहुत फर्क आएगा पैसों में।
आप देखते हैं दारुल इस्लाम में ऐसे कई मसले मसाइल आते हैं। अब मिसाल के तौर पर भी हमारे पास कुछ महीने पहले इस तरह की एक सूरत आई, अब 94-95 के अंदर वो जेवर लिया था, ठीक है, बाज़ वक़्त इस तरह की लेन देन के अंदर हमें बिल्कुल क्लियर मसला हल करना चाहिए उस वक्त बड़ी मोहब्बत होती, भाई बहन और ये वो सब चीजें, बजाय ये कि आगे जाकर एक दूसरे के दस्तों के रबा पकड़े हुए हों। तो इनमें इबहाम जब हम रखते हैं तो इससे इख्तलाफात पैदा होते हैं। अब 95 में दिया, ठीक है, अब वो ये तकादा करेंगे भाई अब आपके पास, हमने तो आपको कोई भी नहीं कहा था, बल्कि ये सराहती आपके साथ के भाई ये जेवर है, ये जेवर हमें आप शायद आपने देना है और आपने यहाँ की थी, ठीक है भाई इसको बनाकर और ये सब चीजें। अब वो कह रहे हैं कि उस वक्त 5,000 था या 7,000 था, ज्यादा था ही नहीं, वो टोटल अच्छा खासा जेवर,
और अब 1,05,000
वो 1,00,000 के अंदर अंदर ही था उस वक्त की मालियत, ठीक है। और अब जब उन्होंने तकाजा किया है तो वो कह रहे हैं कि तो भाई अभी तो हमें तो वही जेवर चाहिए, और ये कह रहे हैं वो 20,00,000 के करीब जो है वो पहुंच गया। लेकिन यहाँ दूसरा पॉइंट भी जो है ना वो ये कि अब 1,00,000 जो उस वक्त आपको वसूल हुआ था और आपने उसको किसी जमीन में मकान में लगाया था तो उसकी भी तो वैल्यू ऊपर चलेगी।
20 साल तक आप भी तो उस 1,00,000 से जो है वो नफा उठाते रहे, और क्या क्या नफा उठाया और जिन भी चीजों में खर्च किया कुछ,
सही बात,
भी तो अपग्रेड जो है वो उसकी बात हो गई।
तो मैं ये ऐसा कोई आप मैसेज ये पैगाम देना कि ये तमाम इस तरह के इबहाम नहीं रहने चाहिए,
इबहाम भी नहीं रहने चाहिए। और फिर दूसरा ये कि जिस वक्त आप कर्ज ले रहे हो,
ठीक है,
उस वक्त जिस कदर जो है वो आप गिरिया उजारी के साथ, आजी और इंकिसारी के साथ कर्ज ले रहे होते हैं
इस
शख्स से, और वो दूसरा शख्स अपना माल अपनी जरूरत से हटाकर या उसके पास इजाफी भी रखा हुआ है वो आप पर रहम खाते हुए आपको कर्ज दे रहा है, लेकिन जब अदायगी की बात आती है तो आप उसका जरा से भी ख्याल नहीं करते। आपके जहन में ये बात यानी कतई नजर इस बात के कि जहाँ तो सूद वाली सूरतें हैं वो तो हराम ही है, उससे तो बचना जरूरी है, लेकिन जहाँ सूद वाली कोई सूरत नहीं पाई जा रही वहां देने वाले को भी तो ये सोचना चाहिए कि जब अदा कर रहा है कि यार आज से 20 साल पहले इसने मेरे साथ अगर भलाई की थी, आज मैं इसको वापस कर रहा हूँ, तो फिर मैं भी इसके साथ भलाई करते हुए एहसान करते हुए जो है वो करूँ, वरना कम अज कम वो चीज तो करूँ कि जिसके अंदर जो है वो सामने वाले को जो है वो तकलीफ ना हो, नुकसान ना हो। जैसे जहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि भाई सोना ही वापस करना जरूरी, तो अब आप वहां पर कंपेयर कर रहे हैं कि जनाब वो तो उस वक्त 5,000 रुपए तोला था और आज ये 1,05,000 रुपए तोला है, तो भाई जो 20 साल आपने बीच में नफा उठाया तो सामने वाले के उसका कोई शुक्र नहीं बनता आपका ऊपर।
सही बात।
तो ये दर हकीकत जो है वो एहसान इंसान पैसों के सामने जो है ना वो शायद दूसरों के लिए एहसान फरामोश जो है वो
और इस
बन जाता है।
वजह से हमारे इस मुआशरे में ये कर्ज देने की नेकी खत्म हो,
नेकी जो है वो खत्म हो जा रही है, यही वजह। यानी कई लोग हैं कि वो कर्ज नहीं देते, उनके पास पैसा रखा हुआ भी तो वो नहीं देते, उनको पता है कि एक तो कर्ज वापिस नहीं मिलना और वो जब वापस मिलना है तो फिर जिस अंदाज में मिलना होता है वो भी लोगों के जो है वो सामने होता है। तो बहरहाल कर्ज लेने वालों को भी चाहिए कि जब कर्ज की अदायगी का वक्त आए तो एक तो वक्त से पहले अदा करें, और किसी भी किस्म का जो है वो जब शर्त ना हो इजाफा दीगर चीजें, तो वैसे ही भलाई के तौर के ऊपर आपकी इस्तेआत है तो आप कुछ इजाफा उसके अंदर जो है वो करें।
यानी ये एक इस्लामी खूबसूरत तालीम है
जो है वो तालीम,
कर्ज तुम में से अच्छे वो हैं जो कर्ज की अदायगी में अच्छे
अच्छे जो बेहतर
जो है ना बेहतरीन।
तो अच्छा, अगर आपकी माली सी जात नहीं है कि आप इजाफी करके दें तो आप उसको आसान अंदाज में पेश कर दें,
ठीक है।
मिसाल के तौर पे किसी ने यूं कर्ज जो है वो पकड़ा दिया, आप एक ये कि आप जाएं उससे सलाम दुआ करें या उसके चलें जो है वो आपने जो है वो उसे अपने घर पर जो है बुला लिया या उसके घर पे चले गया, और अब आप लिफाफे में पैक करके जो पेश कर रहे हैं कि यार बहुत शुक्रिया आपने जो है वो की, मेरे साथ
वादान किया था। ये कौन से सन की या कौन से ये इलाके की बात कर रहे हैं कि वहाँ ऐसा रिवाज है कर्ज की वापसी का,
ये चाहिए
चाहिए
कि अगर आप माली एतबार से किसी के साथ जो है वो अदायगी में एहसान नहीं कर सक रहे तो अपने रवैये के जरिए से तो जो है वो किसी के साथ आप
सही सलूक
करें, उसके साथ जो बेहतर रवैया अख्तियार करें कि उसे खुशी हो गई यार ये अगर आइंदा ये बंदा कर्ज देना है जितना इसने मेरा शुक्रिया अदा किया है कर्ज के ऊपर, तो यार ये तो आइंदा जब भी आए तो मैं बगैर कुछ पूछे इसको जो है वो दे दूं।
और ऐसे लोग जो अपना एतमाद बहाल करते हैं
जी,
और जिनके बारे में ये है कि यार जिसने जो कहा है ये उसके मुताबिक कर लेता है, टाल मटोल नहीं करता, हमें तो शरीयत भी यही हुक्म देती है कि अगर कर्ज दिया है तो कर्ज देने वाले को भी ज़हनी तौर पर तो ये चीज पहले से ही कबूल करनी चाहिए कि सामने वाला अगर वाकई मुफलिस हो गया उसे मोहलत दें, तंग दस्त को आप मोहलत दे दें। ये इस्लामी खूबसूरत तालीमात है, लेकिन इसका मदनी चैनल के नाजरीन हरगिज ये मतलब नहीं है कि पहले कर्ज लेने वाला गिरियाजारी कर रहा हो अब वो बेचारा अपनी रकम लेने के लिए गिरियाजारी कर रहा हो। बात तो ऐसे लगते हैं कि उनपे तरस आ रहा होता है कि ये उनसे कोई ऐसा खुदा ना खासा भीख तो नहीं मांग रहे यार ये कि जो इतनी मिन्नतें कर रहे हैं ये कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला वो उसको देने का नाम नहीं लेता। बहरहाल ये बड़ा एक मौजू है, इंशाल्लाह इसको भी कभी लेंगे कर्ज के लेन देन। اس میں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں اور کفیل صاحب شادیوں میں بیاہوں میں بڑے ایسے مسئلے کہ اب اتنا لیا ہے تو اب اتنا دینا ہے, یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے, اور زیورات کا ہم نے موضوع لیا تھا تو یہ زیورات کا بھی تعلق شادیوں سے بہت زیادہ ہے, تو ربیع الاول میں شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں, اس کو بھی ہم اس موضوع کو جو ہے انشاءاللہ لیں گے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے سلسلہ پروگرام ملاحظہ کیا, جنہوں نے سوالات کیے ہیں اللہ رب العالمین ان کے بھی سوالات اور دینی جو یہ شوق جذبہ ہے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے, اللہ عمل کی توفیق دے, آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی